नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेत् मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके नीलांचलानिवासाय नित्याय परमात्मने बालभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नमं ब्राह्मणे देवाय गो ब्राह्मणे हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। श्रीमद्भागवतम स्कंद 5 अध्याय 13 श्लोक नंबर 15। मनोशिनो निर्जित दिग गजेन्द्र ममेन्ति सर्वे भुविवध वैरा मृधे शरीरा न तु तदव्रजन्ति जत्नस्त्यदण्डो गतवैरो अभियाति। शब्दानुवाद। मनसिना बड़े बड़े पीर पुरुष, निर्जित दिग्गजेन्द्र जिन्होंने हाथियों के समान बलशाली वीरों को जीत लिया है, मामा मेरा देश, मेरा भूमि, मेरा परिवार, मेरा धर्म, इति इस प्रकार सर्वे समस्त महान राजनीतिक सामाजिक तथा धार्मिक नेता भूवि इस संसार में बद वैरा परंपरा से वैर भाव उत्पन्न कर रखा है, मृधे युद्ध में शैरान भूमि में मृत होकर गिरे हुए, ना नहीं तो लेकिन तात श्री भगवान का धाम ब्रजंती पहुँचते हैं, जत जो न्यस्त दंड सन्यासी गत वैरह जिसका विश्व भर में किसी से वैर भाव नहीं है, मतलब सन्यासी हो गए, अभिजाति उस सिद्धि को प्राप्त करता है। अनुवाद और तात्पर्य अभिचरण भक्ति विदान स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की। ऐसे अनेक राजनीतिक तथा सामाजिक वीर पुरुष है और थे जिन्होंने समशक्ति वाले शत्रुओं पर विजय प्राप्त की है, तो भी वो अज्ञानवश यह विश्वास करके कि यह भूमि उनकी है परस्पर लड़ते हैं और युद्ध भूमि में अपने प्राण को गंवाते हैं, वे सन्यासियों के द्वारा स्वीकृत आध्यात्मिक पथ को ग्रहण कर सकने में अक्षम रहते हैं। वीर पुरुष तथा राजनीतिक नेता होते हुए भी वे आत्म साक्षात्कार का पथ नहीं अपना सकते। तात्पर्य, बड़े बड़े राजनीतिक नेता भले ही अपने समान शक्तिशाली राजनीतिक शत्रुओं का परास्त कर दें, किंतु वे अहनिश साथ रहने वाले प्रबल इंद्रिय रूपी शत्रुओं का दमन नहीं कर पाते हैं। इन निकटस्थ शत्रुओं को न जीत सकने के कारण ही वे अन्य शत्रुओं को जीतने का प्रयास करते रहते हैं और अंततः जीवन संघर्ष में मर जाते हैं। वे न तो आत्म साक्षात्कार का पथ ग्रहण करते हैं और न सन्यासी ही बनते हैं। कभी कभी ये महान नेता सन्यासी का वेश धारण करके अपने आप को महात्मा कहलाते कहलवाने लगते हैं, किंतु उनका एकमात्र प्रयोजन अपने राजनीतिक शत्रुओं को परास्त करना रहता है, क्योंकि वे अपने जीवन को यह मेरा है ये मोह से भ्रष्ट कर चुके होते हैं। अतः न उनकी आत्मा उन्नति हो पाती है और न वे माया के चंगुल से मुक्त हो पाते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदे अहम श्री गुरुश्रुतपदकमलं श्री गुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजतं सगण रघुनाथानीतं तं सजीवं साद्वैतं सवदूतं परिजनसहितं कृष्णा चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादन सहगण ललिता श्री विशाखानीतांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रातःकालीन भागवत कक्षा में आप सभी को हार्दिक स्वागत। कृष्ण मुरारका मंदिर का ओर से कृपा करके थोड़ा सा आप लोग आगे की तरफ आइए, क्योंकि पीछे जो लोग आते हैं पीछे बैठ जाएंगे, क्योंकि जो पीछे आते हैं वो आगे नहीं आना चाहते हैं, वो अपना मुख दिखाना नहीं चाहते, छुप कर बैठना चाहते हैं। बहुत महान संत साधु संत होते हैं जो पीछे बैठ कर सुनते हैं, क्योंकि जो भक्त लोग होते हैं FM भी सुनते हैं, क्योंकि कुछ भक्त लोग बाद में आते हैं तो पीछे बैठ सकते हैं, वो आगे आना नहीं चाहते हो, अपना चेहरा दिखाना नहीं चाहते हैं। कोई नहीं, तब आप लोग बहुत दिन से ये चीज को सुनते आ रहे हैं, जो कि राजा रघुगण तथा जड़ भरत के बीच और आगे की वार्ता होता है। ये जो भवाटवी है, भागवत में दो उपमा दिया गया, ये एक उपमा है। संसार को जंगल कहा करके उनको समझा रहा है जड़ भरत ने रघुगणों को। संसार एक प्रकार के जंगल है, मतलब वन है, ये समझाने के लिए, क्योंकि शास्त्र में हम लोग को इतने बुद्धिहीन है जो कि शास्त्र में एग्जाम्पल नहीं दोगे तब समझ में नहीं आएगा। कुछ ना कुछ उपमा देना पड़ता है, कुछ ना कुछ स्टोरी बताना पड़ता है, कुछ ना कुछ कहानी बताना पड़ता है, नहीं तो हम लोग जैसा बुद्धिहीन है नहीं समझ पाए, क्यों कली युग में हम लोग जन्म लिए ना, मंद बुद्धि वाले, इसलिए उसके लिए उपमा देना पड़ता है। ये भागवत की ये उपमा है, संसार एक जंगल है। तब और एक ही उपमा दिया गया है भागवत में, कोई बता सकता है? आप लोग सुन चुके हैं, और एक ही उपमा दिया गया है प्राचीन बहिर को, किसका बारे में? पुरंजन। ये तो ध्यान है, हम लोग सुनते हैं लेकिन हमें मनन नहीं करते हैं, इसलिए कहते हैं भागवत कथा में बैठना है मतलब मनोरंजन के लिए नहीं, मनोमंजन के लिए, मन को मार्जित करने के लिए भागवत, इसलिए हम जो सुनते हैं उसको मनन करना होता है। ये चौथा स्कंद भागवत में पुरंजन का उपाख्यान आता है, चौथा स्कंद पंचम अध्याय से चालू होता है पुरंजन का, कम से कम 3-4 अध्याय है पुरंजन का बारे में, और पुरंजन को शरीर को ही पुरंजन कहा जाता है। इसका बारे में, शरीर का बारे में पुरंजन का उपाख्यान दिया गया, और संसार के लिए वन का उपमा दिया गया। ये दोनों स्थाई नहीं है, अस्थाई है, ना शरीर ना संसार। किसका साथ देने वाले है? शरीर साथ में देने वाले है ना संसार साथ में देने वाले है? नहीं देने वाले, लेकिन फिर भी हमें उसका प्रश्न आ सकते हैं, फिर भी हमें आ सकती है। इसलिए यहां पे एक शब्द आता है, देख सकते हैं दूसरा लाइन का पहला शब्द क्या लिखा हुआ, बोलिए, ममेती। ये दो शब्द जोड़ा हुआ है, मामा और इति। इस प्रकार, इति मतलब इस प्रकार, मामा, सारा संसार में जितने लोग हैं, कितने बुद्धिमान हो, कितने राजनीतिक लोग हो, कितने सामाजिक लोग हैं, सभी लोग क्या सोचता है, ये मेरा है, मैं यहां का मालिक हूं, ये मेरा है, ये दो चीज समझते हैं ना। जब तक ये दो चीज का अंदर फंसा रहोगे तब तक आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकता व्यक्ति। इसलिए कहते हैं पहले साधना, पहले साधना, साधना का बाद सेवा, इसका बाद समर्पित। प्रॉपर साधना नहीं है तब आपका सेवा में कभी मनोवृत्ति नहीं लगेगा और सेवा करने के लिए इच्छा नहीं होगा। और प्रॉपर साधना है, साधना से ऑटोमेटिक सेवा करने के लिए उत्साह होगा, ऑटोमेटिक। कितने घंटा सेवा मिली जाए, 5 घंटा जाके 10 घंटा 12 घंटा सेवा मिल जाए, व्यक्ति करेगा। पहले साधना स्ट्रांग होना चाहिए, साधना, साधना का बाद सेवा, और सेवा करने के बाद ऑटोमेटिक समर्पित भाव आएगा, तृणादपि सुनिश्चन भाव ऑटोमेटिक अंदर प्रकट होगा, ऑटोमेटिक। इसको सिर्फ पढ़ने मात्र से नहीं, बोलने मात्र से नहीं, क्रिएट होगा अंदर से। जिस प्रकार गुरु का साथ हमें मिलने का बात है तब दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित होता है, उसी प्रकार ये क्रिएट होकर समर्पित भाव तब आएगा जब साधना प्रॉपर करोगे। साधना का बाद सेवा, इसका बाद समर्पित, ऑटोमेटिक। ये चीज को हम लोग को ध्यान पूर्वक समझना है। क्यों कह रहा हूं, क्यों, जो वृंदावन में हमें बास कर रहा है, ये वृंदावन किसके लिए है मालूम है सभी को? सिर्फ एक गोस्वामी लोक रहने का स्थान है ये वृंदावन, ऐसा मत देखिए, ये वृंदावन गोस्वामी लोक रहने का स्थान है। तब हमें सीखना चाहिए, हमें यहां पे गोस्वामी बनने के लिए प्रयास करना चाहिए, प्रयास का साथ साथ भगवान का कृपा को याचना करना चाहिए। और ये मामा और जो शब्द है ये ऑटोमेटिक हटेगा, मैं और मेरा शब्द ऑटोमेटिक अंदर से निकल जाएगा। इसलिए वृंदावन गोस्वामी लोग रहने का स्थान है, लेकिन हम गोदास बन के रह रहे हैं। इस स्तर को समझिए पहले, सभी गोस्वामी लोग का चरित्र आप पढ़ेंगे किस प्रकार यहां पे रहे वृंदावन में। जब तक हमारा अहमत्व और ममत्व नहीं जाएगा कृष्ण भक्ति, हमें तो करते जा रहे हैं, हम बोल रहे हैं मैं 20 साल से कर रहा हूं, कितना माला हो रहा है 64 माला कर रहा हूं, कोई बोल रहा है मैं 1,00,000 माला कर रहा हूं, बोल दिया मतलब गया, ये तो आ गया। मैं कर रहा हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, ड्रेस पहनने से ब्रह्मचारी नहीं होता है, जन्म से व्यक्ति गृहस्थ है और हमेशा के लिए गृहस्थ है। मन में कभी इच्छा आ गया, विचार आ गया तो वो गृहस्थ माना जाएगा, ड्रेस पहनने से कोई ब्रह्मचारी नहीं बन जाता है। कोई बोलते हैं मैं ब्रह्मचारी हूं, ये तो आ गया अहंकार। अहमेती और ममेती ये दो शब्द बहुत खतरनाक है, इस चीज को हमको ध्यान से। और एक ही चीज होता है, इससे ध्यान पूर्वक समझिए, इच्छा। जब एक बार इच्छा प्रकट हो गया उसमें 6 चीज आता है इच्छा से। ई मतलब इच्छा, दो अक्षर है, दो अक्षर को ध्यान से समझिए, ई और छा। ई मतलब क्या है? ई मतलब इंटरनल, ई मतलब इंटरनल, छा मतलब 6 प्रकार के चीज अंदर में प्रकट होता है। जब इच्छा प्रकट करने मात्र से, इच्छा हो गया, लेकिन 2 प्रकार की इच्छा है, एक आध्यात्मिक इच्छा, एक मैटेरियल भौतिक इच्छा, लेकिन दोनों में बहुत अंतर, आकाश और जमीन का पार्थक्य है। आपको इच्छा करना है आध्यात्मिक इच्छा, और आध्यात्मिक इच्छा करते हो तत्काल होता है। देखिए माधवेंद्र प्रभु, माधवेंद्र पुरी इच्छा किया, क्या करने के लिए,
क्या करने के लिए? खीर खाने के लिए। फिर भी खीर खाने के लिए इच्छा की तो भगवान भेज दिया। ये आध्यात्मिक इच्छा में जाएगी। नंद जसोदा कृष्ण को पाने के लिए इच्छा की, और नहीं देवकी और वसुदेव इच्छा की, गर्भ में भगवान आए। इच्छा आध्यात्मिक इच्छा, और मैट्रियल इच्छा भौतिक इच्छा बहुत खतरनाक है। इसलिए छह प्रकार क्या क्या आता है भौतिक इच्छा करने मात्र से। भौतिक इच्छा करने से, इच्छा करने मात्र से एक ही हुआ इच्छा, इसका बाद सृष्टि होता है कामना। कामना का बाद है कैसा प्राप्त करूंगा, कहां से प्राप्त करूंगा, किससे प्राप्त करूंगा, और कौन कराएगा, और किधर से होगा। ये छह चीज ऑटोमेटिक धीरे धीरे सीरियल वाइज जाता है। कहां से, कैसा करना, किससे करना, होता है ना। आप लोग नहीं समझ पा रहे तो एक छोटी से एग्जांपल दे दे रहा हूं आप लोग को समझने के लिए, क्यों हम लोग तो इतने गवार है ना, थोड़ा एग्जांपल लेके समझ सकते हैं। बाई चांस कोई व्यक्ति हम मन में आया, ये तो बहुत बड़ा धनीशाली है, लेकिन ये व्यक्ति क्या है, चोर है। चोर का इच्छा आ गया, उसी घर पे जाना है, उसी घर से चोरी करना है। इच्छा प्रकट हुआ तो उसका माइंड के अंदर सब कुछ चलेगा, नहीं चलेगा, कैसा जाना है, कैसा लाना है, कोई कैसा नहीं रहेगा, कोई नहीं देख सकता, सभी कुछ ऑटोमेटिक होता है ना, छह चीज ऑटोमेटिक हो जाता है। इसलिए इसको कहते हैं इच्छा। ई मतलब इंटरनल, छा मतलब छह चीज अंदर में प्रकट होता है। आप देखिए दूसरा अर्थ में कहते हैं, उड़िया भाषा में बोलते हैं माछ, मा छ, सब लोग को मालूम है माछ, मां मतलब मेरा को, छ मतलब जो खाता है, और छह लोग को उसमें भागीदार बनते, इसलिए नाम है माछ। छह लोग का भागीदार जो माछों को खाने वाले हैं, छह माछ। बहुत सारा है इसमें अलग अलग है, ये में वर्णन करते हैं। तब ये संसार में दो चीज जो होता है, मैं और मेरा, ये बहुत खतरनाक है। इससे दूर रहने के लिए संपूर्ण जब तक समर्पित नहीं होता है, जब तक समर्पित भाव नहीं आएगा। इसलिए शास्त्र के तो प्रमाण की कहते हैं, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। हमारा प्राण धन कौन है? कृष्ण है। और माता पिता कौन है? कृष्ण है। लेकिन अभी हमें नहीं समझ पाते हैं, हम बोलते हैं ये मेरा पिताजी है, ये मेरा माताजी है। आज अभी सुबह सुबह एक ही व्यक्ति नया है, आया था सुबह क्लास में, चैंटिंग क्लास में, कम से कम 20 लोग बैठे, सभी को माला दिया जप कराने के लिए। प्रवचन खत्म होने के बाद माला दिया जाता है, तो वो व्यक्ति ने माला पकड़ा नहीं, बोला मैं घर पर मेरा माला है, लेकिन इस्कन में मेरा भक्त, मेरा बेटा इस्कन में है, मेरा बेटा मेरा को समझा चुका है। मतलब आप समझा है फिर माला लेकर अभी यहाँ नहीं करोगे? बोला नहीं, मेरा बहुत सारे प्रश्न है, आपको पूछूंगा तब जाके, अभी तक नहीं समझा, क्योंकि बेटा आ चुका है इस्कन में ना, ये बड़ा परेशानी है। वो सोच रहे ये मेरा बेटा है, ये ऑलरेडी कृष्ण का संपत्ति बनी चुका है, तब उसको भी अभी तक मालूम नहीं है। वो बोलता है मेरा बेटा है। मैं उनको समझाने वाले था एग्जाम्पल से, आपको अभी ये शरीर में इतने ज्ञान बुद्धि थोड़ा होने के नाते आप बोलते हैं मेरा बेटा है। बाई चांस आपका नेक्स्ट जेनरेशन में बाई चांस आपका कुत्ता का जन्म मिल जाए, कुत्ता का जन्म में पिता माता होते कि नहीं होता है, बेटा बेटी होते कि नहीं होता है, तब आप उसी टाइम में क्यों नहीं बोला ये मेरा बेटा क्यों जा रहा है उधर खाने के लिए, ऐसा तो नहीं बोला। कि सुअर का जन्म में पिता माता होते कि नहीं होता है, कोई पशु जोनि में जाता है उसका भी पिता माता होता है, लेकिन मनुष्य होने का नाते इतने बुद्धि ज्ञान देने का बात है, आप बोलते हैं मेरा पिता मेरा बेटा। संसार में कोई किसी का भी नहीं है। भगवान स्वयं भगवद्गीता में कहते हैं अहम बीज प्रद पिता है, भगवान स्वयं कह रहे हैं। तो भगवान का बात को विश्वास करना पड़ेगा, क्यों? भगवान का मुखनिषद तो वाणी है भगवद्गीता, तो भगवान का भगवद्गीता को हमें विश्वास नहीं करते, संसार का बात का ऊपर हमें विश्वास चलता, और संसार हमारा साथ देने वाले नहीं है। कितने भी कर लो, जितने लोग इधर, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं सामाजिक राजनीतिक नेता इतने परेशानी होते हैं, झगड़ा करते हैं, संघर्ष करते हैं, मेरा राष्ट्र है, मेरा देश है, मेरा घर है, फिर मर भी जाते हैं। प्रभुपाद यहां पे एक्सप्लेन करते हैं ना, मर भी जाते हैं फिर भी नहीं छोड़ते। ये संसार हमारा नहीं, ये शरीर भी हमारा नहीं है, ध्यान दीजिए, ये शरीर भी हमारा नहीं। इसलिए कहते हैं देहात्म बुद्धि से हमको ऊपर उठना पड़ेगा, तब हमें समझ पाएंगे। इसलिए कृष्ण कॉन्शियसनेस से जो संस्था बनाया, इसलिए प्रभुपाद इसमें सिर्फ इंटेलिजेंट लोग आते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति। इसलिए कहते हैं हरि नाम कृष्ण नाम बड़ई मधुर, जय जन भजे कृष्ण से बड़ चतुर। हरि नाम कृष्ण नाम जय जन भजे कृष्ण से बड़ चतुर। वो व्यक्ति चतुर है, चतुर मतलब इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, वो हरि नाम करता है। सभी लोग हरि नाम नहीं करेंगे, कितना बार भी आप समझाओ करते हैं। हम तो बहुत सारे भक्त लोग, आप लोग को जाते होगा प्रचार में, कितने लोग को हरि नाम दिलाओ, किताब दिलाओ, नहीं है, नहीं उनका स्वीकृति। और मम मेरा में फंसे है ऑलरेडी। तब ये कहने का बाद है एक छोटी से कहानी आता है हमें भक्त लोग के लिए। भक्त लोग दीक्षा ले चुके हैं, गुरु ग्रहण कर चुके हैं, प्रत्येक दिन भगवान के पास आके प्रणाम करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा अंदर पे मम अहम हो गया नहीं। इसके बारे में एक ही कहानी बताऊंगा लास्ट में, लेकिन पहले आपको बड़ी महाराज का उदाहरण देता हूं। सभी लोग आपको मालूम होगा बड़ी महाराज, इन्हीं का अंदर भी अहम और ममती आ गया था बड़ी महाराज का अंदर। कब? जब बड़ी महाराज का सामने भगवान स्वयं वामन देव प्रकट हो चुके हैं, भिक्षा मांगने के लिए जा चुके हैं, भिक्षाम देही, भगवान स्वयं भिक्षारी बन चुके हैं, भिक्षा मांग रहा है, दान चाहिए, क्योंकि बड़ी महाराज बहुत बड़ा राजा, सारा संसार को वो सोच रहे मैं महादानी हूं, हो तो ऐसा सोच कर दे रहे हैं। तब बड़ी महाराज का सामने जब भगवान प्रकट हुए यज्ञशाला पे, तब सब कुछ हो चुका है, आहुतियाँ सब कुछ हो चुका है। तो बड़ी को संकल्प कराते हैं तीन पग भूमि, तब तीन पग भूमि देने के लिए भी तैयार हो जाता है। दो पग अब तो भूमि दे देता है ऊपर और नीचे, दो पग भूमि लेने का बाद है तीसरा पग भूमि के लिए, तीसरा पग के लिए और उनका पास कुछ भी नहीं। तब बड़े महाराज उसी टाइम पे क्या होते हैं, हाथ जोड़ के समर्पित हो जाते हैं। तब भगवान वहीं पे, भगवान भी वहां पे कुछ भक्त लोग को बोलते हैं भगवान अपना पैर रखते हैं, कुछ भक्त लोग अलग अलग जगह पे कुछ वर्णन इस प्रकार आता है। तो लेकिन भगवान और कुछ नहीं करते, क्योंकि समर्पित जो व्यक्ति सरेंडर हो जाते, समर्पण भाव आ जाता है भगवान बस। तब उनको सुतड़ो लोग को भेजते हैं, सुतड़ो लोग को भेजने का बाद है, क्योंकि भगवान समझ जाते ये समर्पित हो चुका है। तो भगवान स्वयं कहते हैं कुछ वर मांगो। यहाँ पे देखिए बहुत रहस्यमय कथा है, जो कि भगवान जहाँ पे प्रकट होते हैं, व्यक्ति जब समर्पित हो जाता है तो भगवान इमिडिएटली कहते हैं कुछ वर मांगो। तो वर मांगने के लिए जब याचना करने के लिए कहते हैं, तब उसी तत्क्षणात, क्योंकि बड़ी महाराज अहंकार से अहमति और उमामति शब्द में कहते हैं मैं सब कुछ दे रहा था, मैं दे रहा हूँ सबको, दे रहा था दानी बन के। यहाँ पे तत्क्षणात व्यंध्यावली, जो कि बड़ी महाराज का धर्मपत्नी विंध्यावली, वो प्रकट होके कहने लगती है क्या आपका अभी तक भाई अहमत्व और ममत्व नहीं गया, तो फिर आप भगवान से मांग रहे हो? और वो बड़ी महाराज से तो मांगा है, क्या मांगा? सुतोड़ लोक में मेरा द्वारपाल बनने के लिए, सदा सर्वदा मैं आपको दर्शन कर सकता हूं। इसलिए जो सुतोड़ लोक में बड़ी महाराज का घर है, जो राजप्रसाद है, बड़ी महाराज का घर का दरवाजा है 52 दरवाजा, 52 दरवाजा। भगवान परेशानी हो गए, बहुत पूरा अलर्ट रहना पड़ा, कभी किसी भी समय पे कौन सा दरवाजा से बड़ी महाराज निकल सकते हैं। भगवान बहुत होशियार होना पड़ा वहां पे, मंदिर का सिक्योरिटी कोई होशियार होता है कि नहीं होता है, कोई भी गेट में चोर आके भाग जाता है पता नहीं चलता है। लेकिन वहां पे बड़ी महाराज राजप्रसाद से बाहर निकलने के लिए भगवान को बहुत सतर्क करना पड़ा, 52 दरवाजा। तब उसी टाइम पे स्वयं लक्ष्मी जी आती है, तब लक्ष्मी जी एक वृद्ध माता बन के आती है, कहते हैं देखा भगवान बहुत अलर्ट में है, बोले इतने बड़ा भगवान को सेवा दे दिया, ये तो परेशानी हो गई भगवान। तब कहते भगवान को थोड़ा सा हमारा साथ भेज दीजिए। बड़ी महाराज जब कहते हैं तो बड़ी महाराज पहले तो धर्म भाई बनाती है, लक्ष्मी जी बड़ी महाराज को धर्म भाई बनाता है। और धर्म भाई बनाने के लिए भाई जब बनाते हैं तब आप जानते हो रक्षाबंधन होता है, सभी लोग को मालूम है रक्षाबंधन होता है। और उसी जो रिवाज है उसी समय तब से ये परंपरा पड़ा, ये बड़ी महाराज का हाथ में स्वयं लक्ष्मी जी एक ही क्या बांधा, बस जब एक ही धागा बांधा तब भाई का भी कर्तव्य होता है बहन को कुछ गिफ्ट देने के लिए, कुछ गिफ्ट देने के लिए, उपहार देने के लिए। तब बड़ी महाराज लक्ष्मी जी को कहते हैं आप कुछ मांगो। तब लक्ष्मी जी क्या मांगते हैं, बोले जो 52 दरवाजा है ये दरवाजा सभी दरवाजा बंद करके एक दरवाजा रखिए जहाँ पे भगवान अलर्ट रह सकते हैं, एक ही दरवाजा। तब बड़े महाराज ठीक है तथास्तु आपका उपदेश सही है मैं पालन करूंगा। 51 दरवाजा बंद करते हैं, एक ही दरवाजा के पास भगवान ये करते हैं। फिर लक्ष्मी जी कहते हैं देखो कम से कम थोड़ी समय के लिए मेरा साथ में भेज दिया करो, आप यहाँ पे हमेशा के लिए रहेंगे। तब लक्ष्मी जी जब बड़े महाराज को कहते हैं तब कहते ठीक है, इसलिए 8 महीना वैकुंठ लोक में रहते हैं, चतुर् महीना जो 4 महीना होता है वो शुतल लोक में भगवान वामन देव रहते हैं द्वारपाल बन के। तब विंध्यावली यहाँ पे समझाता है, कहता है तुम अभी तक आपके अंदर अहमत तो ममत तो नहीं, आप कर्ता मान के बैठे थे। तब एक श्लोक आता है श्रीमद् भागवत की 8 स्कंद 22 अध्याय श्लोक नंबर 20 में, क्रीडार्थ आत्मन इदम त्यजंत कृतम ते स्वाम्यम तु तत्र कुदिह पर ईशक्यो कर्तुः प्रभस्तव किमसत् आवहन्ति त्यक्त ह्रियस्तोद वरपीत कर्तु बाधः। कहते हैं प्रभु आपने क्रीड़ा के लिए इस संपूर्ण जगत को रचना किया, ये जो संसार बनाया भगवान ने बनाया किसके लिए, भगवान ने क्रीड़ा स्थली। जो लोग कुबुद्धि है बुद्धिहीन है वो ही अपने को स्वामी मानते हैं, अपने को स्वामी मानते हैं। जब आप ही इसके भगवान स्वयं आप ही इसके कर्ता भर्ता और संहर्ता है तब आपकी माया से मोहित होकर अपने को झूठ मूठ कर्ता मानने वाले निर्जल निर्लज आपको समर्पण क्या करेंगे। जो अपने को कर्ता मानता है तो भगवान को क्या समर्पित करेगा, कर नहीं सकता है। अरे भगवान ही संसार का कर्ता और भर्ता और संहर्ता है और भगवान का सारा संपत्ति है और अपने को बोलता है मैं मालिक हूं। इसलिए भगवान ये श्लोक का ऊपर श्रील प्रभुपाद ने 3-3 बार एक भगवद गीता का 3 अध्याय 12 नंबर श्लोक में 3-3 बार विदेशी लोग को समझाया। 3 अध्याय 12 नंबर श्लोक को आप ठीक से पढ़िए और 3 बार इसका ऊपर प्रवचन दिए, एक बार न्यूयॉर्क में एक बार लॉस एंजलिस में। ये श्लोक कहते हैं इष्टान भोगान ही वो देवा दस्यन्ते जग भविता तैदवान प्रदायभ्य जो भुक्ते स्तेन एव स इष्टान भोगान ही। अरे ये जो इष्ट मतलब ये संपत्ति, इष्ट मतलब भोगान, जो ये सारा संपत्ति प्रभु का होते हुए आप भोग वासना जिसके अंदर आ जाता है और वो व्यक्ति क्या कहा जाता है स्तेन, स्तेन मतलब चोर है, स्तेन मतलब चोर है। संपत्ति सभी प्रभु का है, हमारा कुछ नहीं है। अब प्रभु का संपत्ति को हम इस्तेमाल कर रहे हैं मतलब क्या है, अब प्रभु का हमें कुछ भी नहीं दिया, एक बार भी हमें धन्यवाद नहीं कहा। सुबह से शाम तक उठ के इतने प्रभु सब कुछ, सूर्य का आलोक देता है, हवा देते हैं। अब प्रभुपाद यहाँ पे मेंशन करते हैं विदेशी लोग को समझाने के लिए, बोलते हैं आप इतने बड़े बड़े फैक्ट्री बनाया, आप एक ही गेहूं उगा सकते हैं, एक ही सिर्फ गेहूं, एक ही राइस, कितनी बड़ा फैक्ट्री आपको बनाई, कोई फैक्ट्री से राइस बनता है, कोई गेहूं, बहुत बड़े फैक्ट्री आपको बनाया। गेहूं उगने के लिए भूमि चाहिए, उसके लिए बारिश चाहिए, उसके लिए सूर्य का रोशनी चाहिए, उसके लिए हवा भी चाहिए। तो ये जो संपत्ति है किसका है? प्रभु का है। तो प्रभु का संपत्ति को आप इस्तेमाल कर रहे हो तब सबसे बड़ा चोर हो। प्रभुपाद बहुत अच्छा से एक्सपान किया है, इस चीज को हमको समझना चाहिए। क्योंकि संसार में प्रत्येक व्यक्ति जब वो धरती को स्पर्श करता है, धरती पे आता है, तब इमीडिएटली थोड़ी दिन तक उसका अंदर कोई मोह प्रकट नहीं होता है। लेकिन माता पिता का स्पर्श से थोड़ा दिन का बाद, ज्यादा से ज्यादा 1 साल का बाद, 2 साल का बाद, उसका अंदर मोह का बीज डाला दिया जाता है। मोह का बीज ये ऑटोमेटिक मोहित होते जाता है, ऑटोमेटिक। 2 साल तक कुछ नहीं, मां जो बोलेगी वही करेगी। 2 साल के बाद मां को डांटना चालू कर देगी। 2 साल तक उसका मुख खोलते नहीं ना, मां जो बोलेगी जहां सुलाएगी जहां, लेकिन इसका बाद मोह चालू हो जाता है, प्रकट हो जाता है। तब हरि नाम सुमर सुख पाएगा, मत भूला मनुष्य पछताएगा। यह मेरा तेरा झूठ है, तू हरि का है, हरि तेरा है। जब तक हरि का नाम सुमरण नहीं कर पाएगा तब संसार को मत भूल मनुष्य पछताएगा। जब भगवान का नाम को स्मृति नहीं करता है, स्मरण नहीं करता है, भगवान का नाम नहीं लेता है, तब मनुष्य जीवन पाके धिक्कार है, फिर मनुष्य जीवन को पछताएगा। और यह मेरा तेरा झूठ है, ये जो संसार में आप बोलते ये मेरा है और ये आपका, ये तेरा है, ये सब झूठ है। हरि का है, आप हरि के हो और हरि आपका है। ये दो शब्द को ध्यान दीजिए, हरि आपका है और आप हरि का है। कहते हैं हरि बोल से ही तर जाएगा, मत भूल मनुष्य पछताएगा। हरि बोलोगे तब तर जाओगे, हरि नहीं बोलोगे फिर मनुष्य जीवन पाके पछताओगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्त लोग के लिए जो कहानी है बहुत अच्छा कहानी है, ध्यान दीजिए। एक ही राजा था और राजा ने एक दिन प्रातः मुहूर्त से रात को सोया, रात को सो के सोचा, दूसरा दिन उसका जन्मदिन था, रात को सोच कर सोया, दूसरा दिन कल सुबह सामने में जो व्यक्ति आएगा मैं इसको कैसा प्रसन्न करा दूंगा, जो भी संपत्ति ले, धन ले, कुछ भी ले, उसको कैसा प्रसन्न करा दूंगा। तो राजा ने सुबह उठा, सुबह उठ के दरवाजा खुला बाहर निकला, अपना स्नान शौच खत्म करके बाहर निकला। तो दरवाजा खोलने मात्र से थोड़ी सी आगे चलते हुए उसका सामने एक ही भिखारी आ गया, एक ही भिखारी आ गया। तो भिखारी आते हुए क्या किया, उन्होंने अपना जेब से निकला तंबा का एक सिक्का, पहले सब सिक्का चलता था, अभी तो हम लोग को नोट चल रहा है, सिक्का सब, और उसका पहले तो कौड़ी, कौड़ी होता है ना, कौड़ी आप लोग देखा नहीं, बच्चे लोग का हाथ में मानते हैं जो भी, तो वो तंबा का सिक्का उसका हाथ में फेंका, ऐसा ऐसा, मतलब ऐसा ही हाथ किया ना, तो इन्होंने हाथ में ऐसा फेंका, तो भिखारी का हाथ में वो तंबा का सिक्का नहीं पड़ी, नीचे गिर गया। नीचे गिर के कहाँ गिरा, नाली में गिर गया, नाली में गिर गया। तो वो ढूंढने लगा कहाँ गिरा है, तो राजा ने सोचा अरे गंदगी हो जाएगा नाली से ढूंढते हुए, फिर उन्होंने अपना फिर जेब से एक तंबा का सिक्का, तंबा का बाद एक ही पीतल का सिक्का निकाला, पीतल का सिक्का को निकाल के उसका हाथ में फिर फेंका, लेकिन उसका हाथ में पीतल का सिक्का आ चुका है लेकिन फिर भी जाके तंबा का सिक्का को ढूंढ रहा है। राजा परेशान हो गया, बोला कैसा इसको प्रसन्न कराऊं। फिर अपना जेब से कि चांदी का सिक्का निकाला, फिर चांदी का सिक्का निकाल के उसका हाथ में फेंका, फिर उसका हाथ में आ गया, फिर भी उसका मन कहां पे है, नाली में। फिर जाके तंबा का सिक्का को ढूंढ रहा है। राजा फिर परेशान हो गया, बोला चलो ठीक है। फिर अपना जेब से एक गोल्ड का सिक्का निकाला, गोल्ड का सिक्का को निकाल के उसका हाथ में फेंका, फिर हाथ में आ गया, लेकिन फिर भिखारी ने वही तंबा का सिक्का का पीछे पड़ी है, फिर ढूंढ रहा है। राजा बहुत परेशानी हो गया, चिंतित हो गया, बोला क्या करूं, मेरा आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे में बनाना चाहता था, दूसरा मेरा किसी भी मेरा सामने आ जाएगा मैं इसको प्रसन्न कराने के लिए, परेशानी हो गया। तो वो इसको पास में बुलाया, पास में बुलाने का बाद में बुला के उसको पूछा, बोला देखिए आपके हाथ में पीतल का सिक्का है, चांदी का सिक्का है, गोल्ड का सिक्का आ चुका है, फिर आप क्या ढूंढ रहे हो ना, पहले आप जो दिया था ना उसको ढूंढ रहा था। बोला क्या गोल्ड का सिक्का से पीतल का सिक्का बहुत मूल्यवान है क्या, उसको भी पूछा, बोला नहीं 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 इसको चाहिए ना। बोला ठीक है, ये सारा चीज लेके आप प्रसन्न नहीं हो, मेरा राज्य का आधा संपत्ति आपको देता हूं, उसका नाम से रिकॉर्ड भी कर दिया, उसका नाम से रिकॉर्ड भी किया, रजिस्टर्ड हो गया उसका नाम से, फिर भी कहां, फिर भी नाली के पास जाके वो तंबा का सिक्का को ढूंढ रहा है। राजा परेशानी ही परेशानी हो गया। और हम लोग का स्थिति ऐसी है, ये चीज को ध्यान से समझिए, हमारा स्थिति ऐसी ही है, हम कौन सा नरक में थे पता नहीं था, अभी हमें प्रभुपद का सारा किताब को कोई ना कोई कुछ ना कुछ किताब पढ़ा है, एक बात, दूसरा इतने अच्छा संगत मिला है, तीसरा अच्छा गुरु जो परंपरा में मिला है, चौथा परंपरा में आते हुए प्रभुपाद जो शुद्ध भक्त जो कृष्ण का पार्षद बोलने से अतिप्ति नहीं होगा वो मिलने का बाद, फिर कृष्ण आपका सामने प्रकट होने, प्रभुपाद कहे मैं आपको कृष्ण दे रहा हूं, जो माला दिए गुरु जब देता है आपके हाथ में डायरेक्ट बोलता है ना समर्पित आपको दे रहा हूं, ये माला जो है स्वयं राधा कृष्ण है, आपका हाथ में आने का बाद भी हमारा मन अभी कहां पे है, बोलो, विषय भोग में, संसार और शरीर, संसार शरीर सही, ये अभी हबीबी हमको और उच्च लेवल को जाना पड़ेगा, तब जाके भागवत का एक एक शब्द को हमें अच्छा तरह से समझ सकते हैं। ऐसा नहीं भागवत कक्षा में हमें भीड़ लगा देंगे श्री प्रसाद के लिए, ऐसा नहीं, भागवत को एक एक शब्द को समझना है, इसलिए तो प्रभुपाद एक दिन में एक श्लोक लेते थे, प्रभुपाद ने कहा प्रत्येक मंदिर में एक श्लोक एक दिन, एक घंटा का चर्चा होता है, एक घंटा इसको अच्छा से हमको समझने के लिए, अलग अलग स्पीकर्स होते हैं बताने के लिए, और अलग अलग स्पीकर्स अलग अलग भाव दे के ये श्लोक को समझाते हैं, सही, ऐसा नहीं कि हमें इसी भक्त से सुने, अलग अलग भाव होता है अलग अलग भक्त से, लेकिन हमको जरूर भागवत कक्षा में जाके बैठना चाहिए और सुनना चाहिए और ये जानना चाहिए भागवत का जो सारा चीज को समझना है। इसलिए कहते हैं यहां पे और एक ही चीज बताना चाहता था, तब कहते हैं व्यक्ति कब गिर जाता है, कब गिरता है, जब भक्ति नहीं करता है, सभी लोग बोलते हैं भक्ति नहीं करते तब गिर जाता है, लेकिन इसमें तीन मंत्र है, हमें इसको त्रिमंत्र कहते हैं। परिवार में बच्चा जन्म लेता है, बच्चा जन्म लेकर नाते है उसको तीन मंत्र शिक्षा दीजिए, तीन मंत्र प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य है। नहीं तो आप पतन में हो, आपका बच्चे भी पतन में जाएगा और जितने सब पूर्व पुरुष लोग हो वो भी पतन में चला जाएंगे। कैसा ये बहुत क्रिटिकल है आपको समझाने के लिए, आप समझ पाओगे ये उदाहरण मात्र से। पहले बच्चे को हम लोग जन्म देने का बाद उसको पहले शिक्षा दीजिए, ये पहला मंत्र शिक्षा। और शिक्षा देना तो अच्छा शिक्षा, लेकिन अभी संसार में जितने सब शिक्षा होता है किस प्रकार की बताओ, सभी को मालूम है किस प्रकार की शिक्षा हो रहा है। कोई भी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में आध्यात्मिक शिक्षा है नहीं, और जो भी सीखता है कितने भी अच्छा पढ़े लेके बन जाए, पीएचडी कर लिया, साइंटिस्ट ही बन गया, डॉक्टर बन गया, वकील बन गया, बहुत सारा बहुत पढ़े लिखा है। शिक्षा तो भौतिक मेटेरियल स्टडी कर लिया, लेकिन इस शिक्षा का साथ साथ क्या होना चाहिए, संस्कार, दूसरा मंत्र क्या होना चाहिए। लेकिन इस शिक्षा भौतिक शिक्षा अच्छा होने का नाते फिर क्या होगा, जब संस्कार नहीं दिलाओगे वही पुत्र वही बच्चा आपका शत्रु बन सकता है। सही, अभी जो संसार का बात, शिक्षा का साथ साथ संस्कार होना चाहिए। शिक्षा देना कर्तव्य है पिता माता का, और शिक्षा अच्छा शिक्षा, शिक्षा का साथ साथ क्या होना चाहिए, संस्कार। और जब संस्कार नहीं दोगे तो पिता माता का नाम बस, पिता माता भी पतन में जाएंगे। ये पिता माता का कर्तव्य होता है संस्कार कैसा दिलाना है, ये पिता माता का हाथ में है। इसलिए कहते हैं बच्चा कुछ गलती करेगा पिता माता का नाम आएगा, बच्चा कुछ अच्छा काम करेगा माता पिता का नाम आएगा। इसलिए संस्कार, शिक्षा का साथ साथ संस्कार होना चाहिए। इसलिए तो संस्था प्रभुपाद ने ये संस्था बनाया, वर्णाश्रम धर्म क्यों बताया, वर्णाश्रम धर्म पहले था लेकिन लुप्त तो हो चुका है। प्रभुपाद इस्कन संस्था को प्रतिष्ठा करके ये वर्णाश्रम धर्म को पालन करने के लिए शिक्षा दिया, वर्णाश्रम धर्म को पालन करने के लिए। ये संस्कार है, शिक्षा का साथ है संस्कार, संस्कार का बाद आता है संग, संग। और इसी प्रकार का व्यक्ति का संग होना चाहिए, संग का फिर प्रभाव पड़ता है। भक्त का संग करोगे भक्ति क्रिएट होगा, भक्त बनेगा, और अभक्त का संग करोगे बस अभक्त बनोगे, संग। इसलिए शिक्षा, संस्कार और संग, ये त्रिमंत्र में कहता हूं, तब जाके व्यक्ति का उद्धार होगा। और ये जो हमारा अंदर के जो ममा और ममती, ये जो अहमत्व और ममत्व शब्द ऑटोमेटिक, ये संस्कार से और संग से, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, संस्कार और संग। पिता माता का क्या संस्कार होता है, बच्चे लोग ऑटोमेटिक भक्त बनते हैं ऑटोमेटिक, पिता माता का कुछ संस्कार होता है, और कुछ पिता माता का संस्कार है नहीं, अपना बच्चे को कहाँ पे क्या करना चाहते हैं। इसलिए मैं पहले बताया था, पुत्र बेटा लड़का लाला, इसको आप लोग समझ रहे हैं ना, पुत्र, पुत्र का अर्थ क्या है, ये भागवत में बनाना है, पुत्र, पुत्र मतलब पुत नाम का नरक से जो उधार करता है उसका नाम है पुत्र, नहीं तो मूत्र, दोनों एक ही जगह से एक। फिर वही पुत्र को हमें कभी कभी बेटा बोलते हैं, बेटा वही होता है जो पिता माता का संपत्ति को बटुकरा करता है, उसको बेटा बोला जाता है। और लड़का जो पिता माता के साथ लड़ता रहता है, और लाला जो पिता माता को ललकाराता है। लेकिन हमें इसी प्रकार का पुत्र नहीं बनाना, पुत्र बनाना है प्रहलाद महाराज जैसा, भरत महाराज जैसा, शिक्षा है ये भागवत ही, सब कुछ भागवत में है। प्रभु जी कथा कर रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, आप बताइए भागवत में कौन सा चीज नहीं है, कोई प्रश्न पूछे, क्या नहीं है आपको बताएंगे? कोई भी ऐसा चीज नहीं है भागवत में, नहीं है प्रत्येक चीज भागवत में। इसलिए कहते हैं हमारा लाइफ को अच्छा से बिताना चाहते हैं, हमें अपना लाइफ को अच्छा से बिताना चाहते हैं, भागवत पढ़ के देखिए। आप बिजनेस अच्छा करना चाहते हो, भागवत से मिलेगा। अच्छा पत्नी ग्रहण करना चाहते हो, भागवत से मिलेगा, सब कुछ भागवत में। अच्छा घर को चलाना चाहते हो, मैनेजमेंट अच्छा करना चाहते हो, भागवत में मिलेगा। कोई ऐसा चीज नहीं भागवत में नहीं है। ये हमारा लाइफ का पैकेज है भागवतम, भागवत से ही सब कुछ शिक्षा मिलता है। इसलिए हमें नित्यम भागवत सेवा, प्रत्येक दिन भागवत पढ़ें, प्रत्येक दिन भागवत श्रवण करें, तब ये सारा चीज हमको मिलते रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर शाम का समय है, 5 से 6:30 बजे तक जगन्नाथ का भक्त चरित्र, आप लोग सभी को वेलकम शाम को आने के लिए। आज बहुत एक अच्छा भक्त है, जो भक्त का बारे में आप चर्चा होगा तो भक्ति आपका बढ़ेगा। श्रीमद् ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, शिष्य वृंदावन धाम की, पुरुषोत्तम मास की, पुरुषोत्तम मास में भक्त वृंदावन में वास करने वाले भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।